نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربي زدني علما، اللهم فقهنا في الدين، اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل للمطففين، ويل هو مطففين کے لیے. ویل کیا چیز ہے؟ جیسے میں نے آپ کو بتایا، ہلاکت، تباہی، بربادی ہے. اور ویل ہے جہنم کی ایک وہ وادی جس میں جہنمیوں کا خون اور پیپ جمع ہوتے ہیں. اور اس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ جہنم میں، چونکہ جہنم بہت بڑی ہے، اس میں ڈفرینٹ ایریاز ہیں، تو جہنم میں جتنے بھی دوسری جگہ ہیں وہ پناہ مانگتی ہیں، یعنی جہنم خود سمجھنے کے پناہ مانگتی ہے اس وادی سے، اپنی اس وادی سے، ویل جس کا نام ہے. یہ اتنی زیادہ شدید، اتنی خوفناک، اتنی اندوناک ہے کہ جہنم بھی اس سے ڈرتی ہے، کہ اس سے پناہ مانگتی ہے. تو یہ ویل اتنی سخت وعید ہے کس کے لیے، یہ اب ہم چیک کریں گے. للمطففین، مطففین کے لیے. اوکے، اگلی دو آیات میں یہ بتا دیا گیا ہے کہ مطففین کیا ہے، پھر بھی ہم اس کی ڈیٹیل دیکھتے ہیں. طوافا سے یہ لفظ ہے، اور تطفیف کہتے ہیں چھوٹی اور حقیر چیز کو، بہت چھوٹی سی جو چیز ہوتی ہے. پہلے زمانے میں لوگ ناپ تول کے لیے کچھ ایسے پیمانے یوز کرتے تھے، جیسے مثال کے طور پہ آج بھی آپ دیکھتے ہیں دودھ وغیرہ ناپنے کے لیے آپ کے ملکوں میں ایک وہ بڑا سا گلاس سا ہوتا ہے 1 کلو کا، اس میں جتنا دودھ آ جائے گا وہ 1 کلو کا بن گیا. اس زمانے میں بھی اس طرح سے کچھ پیمانے ہوا کرتے تھے. تو اسی سے یہ لفظ بھی ہے، متفف، تطفیف، تفا، ناپ تول میں، یعنی جو پیمانہ بھرتے وقت کم بھرنا، تفافا کہتے ہیں اس کو، یعنی پیمانہ جب بھرا جاتا ہے تو اس کو کم بھرا جائے. اور جو 1 کلو کا گلاس ہے اس کے اندر مثال کے طور پہ کم اس کے اندر ڈالا. یہاں آپ گز کا تو آپ سب نے ہی دیکھا ہوگا اپنے ملکوں کے اندر، وہ تو گز ناپ ناپ کے، یہاں پہ بھی ایسے کرتے ہیں، ان کے پاس وہ گز کا یا یارڈ کا وہ جو پورا ایک سٹک ہوتی ہے اس کے اوپر ناپتے ہیں کپڑے کو، تو اس کے اندر کمی کر دینا، یعنی پیمانہ بھرتے وقت، ناپتے وقت، تولتے وقت کمی کرنا. تو کہا گیا کہ ویل ہے ان کے لیے جو چھوٹی سی چیز میں کمی کرنے والے ہیں. کیا مطلب ہوا؟ کہ یہ وہ بندے نہیں ہیں جو بڑے بڑے فراڈز کرتے ہیں. ایک تو آپ کو پتا ہے دنیا میں اتنے بڑے بڑے فراڈ ہوتے ہیں کہ ایسا ہاتھ دکھاتے ہیں کہ پتہ ہی نہیں چلتا، لاکھوں کے، کروڑوں، اربوں کے، تو آپ اس کو تو فراڈ کہتے ہیں، ٹھیک ہے. لیکن یہ بندہ جو ہے نا متفف، یہ چھوٹی سی چیز میں ڈنڈی مارتا ہے، چھوٹی سی چیز میں ایسا ہاتھ دکھاتا ہے، ایسی ہاتھ کی صفائی دکھاتا ہے کہ خریدنے والے کو، گاہک کو پتہ ہی نہیں چلتا کیسے اس سے دھوکا ہو گیا. مثلا 5 گز کا کپڑا ہے، اگر آپ کو 4.89 یارڈ دے دیا بجائے 5 یارڈز دینے کے، تو کتنی معمولی سی چیز یہ چیز ہے نا. اسی چیز کو کہا گیا یہاں پہ کہ تطفیف چھوٹی سی چیز، حقیر سی چیز کے اندر دھوکا کرتا ہے. آپ اندازہ کریں एक सोसाइटी में क्या हाल हुआ होगा जब ये आयात उतरी होंगी कि जो मामूली सी चीज में भी कमी करे उसके लिए वही ले हलाकत है। और हमारी आज की सोसाइटी जो है वो इसी बीमारी के अंदर आज मुब्तला और इतनी ज्यादा है ये बीमारी कि इसको कोई बिग डील समझा नहीं जाता, कोई बड़ी चीज नहीं समझा जाता, बल्कि अगर कोई कहे भी तो कहा जाता है इसमें क्या बात है, तो मामूली सी बात है, कोई हंसी देगा कि इतनी मामूली सी चीज के ऊपर ऐसे थोड़ी कहीं कयामत में पकड़ा जाएगा। लेकिन इस्लाम जो है ना जुल्म के खिलाफ स्टैंड लेता है, ये भी जुल्म है। आपने अपने ग्राहक को थोड़ा सा कम भी दे दिया वो भी जुल्म है, क्योंकि देखें ये छोटा 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 करते करते कहाँ तक पहुंच जाता है। जो मैंने अभी आपको मिसाल दी 4 पॉइंट मिसाल के तौर पे 8-9 यार्ड उसने दे दिया, क्या 10-11.11% उसने यानी यार्ड उसने रख लिया, कितनी मामूली सी चीज़ है ना ये। लेकिन ये मामूली हर एक गाहक के साथ मामूली मामूली सी बेईमानी जिसको हम कहते हैं, करते 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 इंसान अपने लिए गुनाह का कितना बड़ा ढेर इकट्ठा कर लेता है, ये भी तो सोचे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दफा सहाबा कराम के साथ जा रहे थे तो एक जगह जब पड़ाव किया तो सब ने लकड़ियां जमा की छोटी छोटी इधर 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 से कि भाई आग जलाई जाए और कुछ खाना वाना पकाया जाए। तो जब सबने छोटी छोटी लकड़ियां इकट्ठी की तो एक ढेर बन गया, एक पहाड़ सा बन गया लकड़ियों का, हालांकि वो छोटी छोटी थी ना। इसी तरह गुनाह है, छोटे 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 छोटे, इधर छोटा उधर छोटा उधर छोटा, आप सोचते हैं छोटा ही तो है, वो छोटा छोटा करते करते पहाड़ बन जाता है। और जिसको ये लत लग जाए एक दफा इस तरह की बेईमानी की, अब मैं डंडी मारना इसलिए नहीं कह रही हूं कि बाज लोगों को शायद ये ना समझ आए कि क्या ये चीज होती है, तो ऐसी बेईमानी की जब लत लग जाए तो इंसान फिर करते करते इतना आदी हो जाता है, हर चीज में ही वो डंडी मारने लगता है, फिर हर चीज में बेईमानी करता है। आप ये देखें, हम कहते हैं ना दीन को अलग करते हैं दुनिया को अलग करते हैं, ये तो मैं दीन की बात है और ये मेरी दुनिया है, आखिर दुनिया में भी तो रहना है। लेकिन मुत्तफिफीन की बात किसके लिए आ रही है, अल्लदीना इज़ अक्तालू अलन्नासी यस्तौफून, ये ऐसे लोग हैं मुत्तफिफीन, उनकी आगे डिटेल बताई जा रही है वो क्या है। ये वो लोग हैं जो नाप कर लेते हैं लोगों से तो पूरा पूरा लेते हैं, जब लेना होता है ना तो पूरा लेते हैं। वह इदा कैलूहम अव वजनूहम युखसिरून, जब देने का ही बारी आती है नाप कर देने की या वजन करके देने की बारी आती है तो कम कर देते हैं। समझ आई बात, लेते वक्त मुझे पूरा पूरा मिलना चाहिए भाई, दैट्स नॉट फेयर कि आप कम करके दें, लेकिन जब देने लगते हैं तो तब कमी करते हैं, चाहे वजन करके दे रहे हो चाहे नाप के दे रहे हो, तो कम तोलते हैं कम नापते हैं। यहां से पता चला ना कि इस्लाम जिंदगी के हर मैदान के लिए इंस्ट्रक्शन देता है। हमने इस्लाम को सिर्फ मस्जिद तक महदूद कर दिया, मस्जिदों में बंद कर दिया कि मस्जिद गए तो जैसे इस्लाम के कपड़े पहन लिए, एक लबादा ओढ़ लिया, मस्जिद से बाहर आए तो उतार के फेंक दिया। अब आगे बाजारों में इस्लाम नहीं चलेगा, हमारे अपने रूल्स चलेंगे, वहां पे तो जरूरी है तथवीफ करना तो जरूरी है, उसके बगैर कहां हमारा कारोबार चलेगा। हकूक वगैरह घर की जिंदगी में माशरती जिंदगी में माशी जिंदगी में हम कहते हैं हमारे अपने तरीके चलेंगे, हालांकि यहां से पता चला कि इस्लाम हर एक फील्ड ऑफ लाइफ में चलेगा, ये बाजार की जिंदगी हो या घर की जिंदगी हो या मस्जिद हो, सब जगह है। तथफीफ भी जो है ना हर चीज में होती है, हर चीज में, जैसे देखें एक माली मैदान है इसी तरह आप देखें कुछ हकूक तो है उनका ताल्लुक पैसे रुपए पैसे नाप तोल से है, ठीक है उसके तो आपको समझ आ गया, लेकिन कुछ का ताल्लुक नाप तोल से नहीं है, उसमें भी कमी करना वो तत्फीफ है। तत्फीफ हर एक जगह पे है, हत्ता के नमाज रोजा वजू वगैरह इसमें भी तत्फीफ होती है जब इंसान कमी कर देता है। जब इंसान उनमें डंडी मार देता है, कैसे? वजू करते वक्त अगर आपने पूरा वजू ना किया, जैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक शख्स को देखा था कि उसने सारा वजू कर लिया लेकिन जो हील्स है ना एड़ियां उनमें ड्राई रह गई। जैसे अब हम वजू करने लगते हैं तो हील्स की इतनी परवाह नहीं की कि भाई पूरी अच्छी तरह धुली है कि नहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इन एड़ियों के लिए वईल है, ठीक है, उसके लिए भी एक आ, क्योंकि ये तदफीफ कर दी ना उसने, तो तदफीफ मैंने बताया है ही वो चीज। अब आप कहेंगे लो इतनी से सारा वजू तो ठीक है ना, इतनी सी एड़ी ही रह गई थी ना, इतनी सी कोहनी ही रह गई थी ना, नहीं है ही ये वो छोटी सी चीज जो काबिले जिक्र भी ना हो, ऐसी चीज के जिसमें कमी करना इंसान कुछ बड़ी बात समझता ही नहीं है। इसी तरह नमाज में जल्दी जल्दी नमाज पढ़ना, इतनी तेजी से पढ़ना कि उसके हर जो रुकन है वो पूरी तरह अदा ना हो, तो आपने कमी कर दी ना, अल्लाह के हक में कमी कर दी, ये तत्फीफ है। तो माल में तो तत्फीफ है ही, याद रखें हर एक हकूक जो है किसी के भी उनमें भी कमी करना तत्फीफ ही है। अब हम अगर इसको इलेबरेट करें, नाप तोल में तो देखें ठीक है, अहले अरब क्या करते थे, या तो जैसे मैंने आपको बताया नापने में ही कम नाप लिया, तोलने में कम तोल दिया, या पैमाना ही छोटा बना देते थे, यानी वो उस मिसाल के तौर पे अब किसी ने अपना जो यार्ड स्टिक है उसके अंदर ही ऐसा कुछ किया कि उसको ही छोटा कर लिया, अब नापता रहे उसको पूरा, देगा तो थोड़ा ही ना, तो ठीक है नाप तोल में तो कमी आपको समझ आ गई, लेकिन हकूक में कमी, ये एक ऐसी चीज है जिसमें बहुत ज्यादा लोग इसमें फिर इस कैटेगरी में आ जाते हैं, क्योंकि हकूक का मामला ऐसा है। देखें आप के ऊपर अगर किसी का हक है, यानी फॉर एग्जाम्पल आपके वालदैन का हक है कि उनकी खिदमत की जाए, ठीक है ना, हक है आपके ऊपर, तो आपका वो क्या बन गया, फर्ज। एक का हक होता है तो वो दूसरे का फर्ज बन जाता है कि वो उसको करे। तो जब फराइज में इंसान कमी बेशी करता है, फराइज कम अदा करता है, तदफीफ कर रहा होता है, क्योंकि वो दूसरे का हक था, उसने उसके हक में कमी की है, तो हकूक और फराइज हैंड इन हैंड चलते ना, एक का हक दूसरे पे होने का मतलब है दूसरे का फर्ज है। अगर मेरा हक है कि आपने मुझे $10 देने हैं, तो आपका ये क्या बन गया, फर्ज बन गया। तो ये हकूक और फराइज, यहां पर हकूक में कमी आ रही है, इसका मतलब है कि दूसरा अपना फर्ज पूरा नहीं निभा रहा। आप देखें कि हम जब हकूक और फराइज का मामला आता है तो हमारी ये बहुत बड़ी नजर इस चीज के ऊपर होती है कि मेरा हक फलाने ने नहीं दिया, फलाने ने नहीं दिया, उसके ऊपर भी हक बनता था, उसके ऊपर भी हक बनता था, मेरा हक था इसके ऊपर। असल मैं कहूं कि बच्चों में मेरा हक है कि वो मेरी खिदमत करें या मेरी फरमाबरदारी करें, तो हमारी नजर हकूक के ऊपर बहुत ज्यादा होती है। ऑन द अदर हैंड फराइज, मेरा फर्ज क्या है, मुझे भी तो किसी का हक देना है ना, लोगों ने जो मेरा हक देना है वो मैं बहुत जानती हूं, लेकिन मैंने किसका हक देना है ये हमें कभी याद नहीं होता। लेकिन आज यहां पे देखें ये नहीं पूछा जाएगा किस किस ने आपका हक देना था तो उसने अदा नहीं किया, वो उनके साथ पूछा जाए, वो उनकी पूछ है, उन्होंने नहीं अदा किया उनसे पूछ, मुझसे क्या पूछोगी, मैंने कौन सा हक नहीं अदा किया किसी का? मुझसे ये नहीं पूछा जाएगा उसने क्यों नहीं किया तुम्हारा हक, आपके बच्चों ने क्यों नहीं आपकी खिदमत की, ये मुझसे नहीं पूछोगी। मुझसे ये पूछोगी कि मैंने किस किस का हक देना था, मैंने क्यों नहीं अदा किया, यानी मेरे फराइज क्या थे, मैंने कहां कहां कमी की दूसरों को उनका हक देने में। जहां तक माल में तकसीफ की बात है, उसके बारे में तो एक वाज़े हदीस है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दफा हजरत अब्दुल्ला बिन उमर अमर बयान करते हैं कि हमारे पास आए और फरमाया, ऐ मुहाजरीन के ग्रोह, पांच चीजें ऐसी हैं कि तुम उनमें मुब्तला हो जाओगे और मैं इससे अल्लाह की पनाह चाहता हूं कि तुम इनमें मुब्तला हो। नंबर वन, जिस कौम में भी बेहयाई जाहिर होती है, हत्ता कि वो बरसरे आम बेहयाई के काम करें तो उनमें ताउन फैल जाता है और वो बीमारियां जो इनसे पहले लोगों में नहीं थी वो फैल जाती हैं। अब ताउन उस जमाने में था, आज के जमाने में अल्लाह माफ करे आप, ये जो बीमारी कैंसर की है या एड्स है, ये चीजें पहले जमाने के लोगों में तो नहीं थी ना, अभी ज्यादा सुनने में आ रही है ना। तो इसकी कभी ये वजह सोची है कि जो बेहयाई लोगों में फैल जाती है और सरे आम बेहयाई के काम होने लगते हैं, आपके चाहे टीवी चैनल्स उठा लें, चाहे आपके बाहर बाजार देख लें, आपके यानी और कोई भी प्लेसेस पार्टियां देख लें, शादियां देख लें, वह बाहर आम घूमना फिरना लोगों का देख लें, लिबास में बेहयाई है, नजरों में बेहयाई है, जो चाल चलन और दूसरे काम हो रहे हैं बेहयाई के वो तो इसके अलावा हैं, जैसे जिना फैल रहा है, कितनी ऐसी चीजें हैं बेहयाई के काम, आप मुझे डिटेल में बताने की जरूरत नहीं, आपको खुद पता है। फिर हम पूछते हैं कि बीमारियां क्यों फैल रही हैं, क्या वजह हो रही है, हमारे फूड में ऐसा क्या आ गया, हमारे इसमें क्या, ये भी तो देखो कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया कि क्यों फैलेंगी ये बीमारियां जब बेहयाई जाहिर होगी। कभी बेहयाई को भी तो खत्म करने की कोशिश करो अगर बीमारियों से बचना चाहते हो। हम कहते हैं फर्टिलाइजर डाल देते हैं, फलाना कर देते हैं, कितनी तरह के हम तावीलें करते हैं। यहां पे ये नहीं बताया गया कि क्योंकि ये हो जाएगा तो फिर ये होगा, चूहे होंगे तो प्लेग फैलेगा और ये बीमारियों के लिए ये होगा, लोग अपनी सेहत की हिफाजत नहीं करेंगे तब ये होगा, नहीं। क्या वजह बताई आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सच्ची बात और किसकी हो सकती है। लेकिन कभी हमने इस एंगल से भी सोचा इन चीजों को। फिर नंबर टू, पांच चीजें हैं ना, नंबर दूसरी चीज क्या है, जो कौम नाप तोल में कमी करती है उस पर कहत आ जाता है, इफलास आ जाता है और जालिम हुक्मरान उन पर मुसल्लत कर दिए जाते हैं। आप अपने बाजारों में देखें कैसे नाप तोल में कमी की जा रही है, कैसे तदफीफ हो रही है हकूक में भी, और इसको हम डिटेल में देखेंगे तो आप देखिएगा ये किस किस तरह कमियां हो रही हैं। तो फिर कहत क्यों ना आए, और कहत का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि चीजों की कमी हो जाना, बल्कि चीजें एक्सेसिबल ही ना होना। मसलन महंगाई इतनी ज्यादा हो गई कि चीजें ही एक्सेसिबल नहीं रही, लोगों के रसाई में नहीं रही चीज, ये भी इसी में है, ठीक है। और फिर आप देखें इन पर जालिम हुक्मरान मुसल्लत होते हैं, जब जालिम हुक्मरान आते हैं हम कहते हैं ये हुआ वो हुआ, पता नहीं क्या क्या जो भी हम तावीलें देते हैं, कहीं धांधली हो गई, कहीं ये हो गई, ये भी तो देखो कि नाप तोल में कमी हो रही है। नंबर तीन, जो लोग अपने मालों की जकात नहीं देते तो आसमान से जो बारिश है उससे महरूम कर दिए जाते हैं, और अगर हैवान ना होते तो इन पर बिल्कुल ही बारिश ना होती। ये हदीस है, जो माल की जकात नहीं देते उनकी वजह से बारिशें रुक जाती हैं। आप कहते हैं कि वो दरख्त काट दिए गए, बस गर्मी इतनी हो गई, वो क्या आजकल वो ओजोन में क्या हो गया, जो भी ये सब चीजें हैं, हाँ आप कहते हैं ये सब चीजें हो रही हैं जिसकी वजह से बारिशें रुक गई। लेकिन ये देखें कि ज़कात ना देने की वजह से तमाम लोगों पर एक मुसीबत आ जाती है। और जो लोग अल्लाह और उसके रसूल के अहद को तोड़ते हैं, इनके ऊपर इनके मुखालिफ दुश्मन को मुसल्लत कर दिया जाता है, वो इनके हाथों से माल छीन लेता है। तो दुश्मन आएगा, दुश्मन मुसल्लत भी होगा, और मुसलमानों के तेल पे भी और उनके और खजानों पे काबिज भी होगा। क्यों? इसलिए कि तुम अल्लाह और उसके रसूल के अहद को तोड़ते हो, जो उनसे अहद किया हुआ है उसके अंदर डंडी मार रहे हो ना। नंबर 5, और जो अल्लाह की किताब के मुताबिक फैसले नहीं करते और अल्लाह के नाजिल किए हुए अहकामात को तरजीह नहीं देते, अल्लाह ताला उनमें एक दूसरे का खौफ पैदा कर देता है। खौफ, खौफ, आज तो इतना खौफ है ना कि हम घर बैठे भी डरते रहते हैं, पता नहीं क्या हो जाना है, पता नहीं क्या हो जाएगा, आप हमें पकड़ लेंगे, आप फलाना हो जाएगा, अब ये हो जाएगा। कोई कुरान पढ़ने से डरता है, कोई नमाज के लिए जाने से डरता है, कोई मस्जिद के साथ अटैचमेंट से डरता है। इतना खौफ है कि आज अपने नाम तक लोगों ने बदल लिए कि ये खौफ कि हमें किसी को पता ना चल जाएगा हम मुसलमान हैं। यार इसकी वजह क्या है इस खौफ की? कोई और वजह नहीं, अल्लाह की किताब के मुताबिक फैसले नहीं करते, अल्लाह ताला के अहकामात को प्रेफर नहीं करते, उनकी प्रायोरिटी लिस्ट में है ही नहीं वो कि इन पे भी कभी अमल करना है, उनको पसे पुश्त फेंका हुआ। तो ये बताया गया कि देखो जो इसमें इस हदीस के अंदर जो बात 5 चीजों में जो एक बात थी कि नाप तोल में कमी होती है ना तो कहत आता है, इफलास आती है, भूख आती है, गुर्बत आती है, जालिम हुकमरान मुसल्लत कर दिए जाते हैं। तो ये जो नंबर 2 पे बात थी, इसको आप इस हदीस की को इस इन आयात की रोशनी में देखें तो आपको पता चलेगा कि वहाँ पे आखरत में तो इसका जो भी बदला मिलना है, वईल है, तरबाही है, हलाकत है, लेकिन दुनिया में भी इंसान इसकी वजह से कितना नुकसान उठाता है। और बाज़ दफ़ा कहत और इफलास का ये भी मतलब हुआ कि सामने चीज़ें पड़ी हुई हैं, टेबल भरी हुई है, लेकिन खा ही नहीं सकते, खा ही नहीं सकते। ऐसी बीमारी लग चुकी है, ऐसे कोई मसले मसाइल हैं कि नहीं खा सकते, ये नापतोल में कमी करने की वजह से। तो आज अगर घर घर में तदफीफ हो रही है तो आप सोचेंगे फिर क्या हाल होगा, फिर हम किस बात का रोना रोएं? हम वजह दूसरी जगह ढूंढते हैं, वजह हमारे अपने अंदर है। और यहाँ पे तो तदफीफ, जैसे मैंने आपको कहा, छोटी छोटी चीज़ों में होती है, छोटी छोटी चीज़ों में। और हमारे यहाँ तो हाल ये है कि पूरे पूरे सालिम समझ लें हाथ ही निगल जाते हैं और कोई पूछने वाला नहीं है। और इनमें अच्छे भले शुरफा लोग भी शामिल हैं, हम किसी चोर उचक्के डाकू की बात नहीं कर रहे, शरीफ लोग, अच्छे लोग जो सोसाइटी में बड़े इज्जत वाले समझे जाते हैं, तो सब इसमें शामिल है, क्योंकि जहाँ पे हकूक का मामला है। इसके अंदर अब हम देखते हैं मिसालें, हम जो जितनी भी यानी मैं आपको ला के दे सकी, आपको अगर मुतफ़िफ की असल डेफिनेशन समझ आ गई है तो हम ढूंढ सकते हैं अपनी ज़िंदगियों में कि कहाँ कहाँ तदफीफ हो रही है। कुछ एग्जांपल्स मैं आपको बता देती हूँ। मिसाल के तौर पे औरत का मेहर लिखाया जाता है, ये उसका हक है, लेकिन अदा कभी नहीं किया जाता, उल्टा ज़बरदस्ती माफ़ करा लिया जाता है कि बस ठीक है इसको छोड़ो, अगर वो मांगेगी तो वो बुरी बनेगी। तो वैलुल लिल मुतफ़िफ़ीन, बेटियों को जहेज़ दे के ये कह दिया जाता है कि अब विरासत में इसका कोई हिस्सा नहीं, हालांकि जहेज़ तो आपने खुद मुकर्रर किया, अल्लाह ताला ने तो मुतालबा नहीं किया था जहेज़ का, अल्लाह ने तो विरासत में हिस्सा देने का मुतालबा किया, उसको तो बिल्कुल एक तरफ कर दिया कि जो हमने दे दिया वो जहेज़ में दे दिया, अब इसके बाद कुछ नहीं है। तो वही लुल्लिल मुतफ़िफ़ीन, शौहर बीवी के हकूक हैं, अब मसलन बीवी अपने हकूक का तो बहुत मुतालबा करेगी, मुझे इतना खर्चा मिलना चाहिए, मुझे ऐसे होना चाहिए घर में, मुझे ये चाहिए वो चाहिए, लेकिन जब शौहर के हकूक अदा करने की बात आती तो इग्नोर कर दे। तो वही लुल मुतफिफीन, आप किराए के घर में रहते हैं, आपने घर तो पूरा पूरा इस्तेमाल किया, लेते वक्त तो आपने नहीं कहा कि मैं इतना हिस्सा नहीं लूंगी और इतना हिस्सा इस्तेमाल ही नहीं करूंगी, लेकिन देते वक्त किराया देने में महीनों गुजर रहे और आप किराया नहीं अदा कर रहे। तो वही लुल मुतफिफीन, किसी को आपने एम्प्लॉय रखा अपने पास मगर इसको तनख्वाह नहीं दे रहे कि हमारे तो अपने खर्चे पूरे नहीं हो रहे, उसको लटकाए चले जा रहे हैं लटकाए चले जा रहे हैं, वही लुल मुतफिफीन। तीन लोगों ने अगर पार्टनरशिप की, शराकत की किसी कारोबार में, उनमें से दो काम करें और एक कम काम करें और मुआवजा उतना ही चाहे कि जितनी मेहनत बाकी दो कर रहे हैं, तो वैलुल लिल मुतफिफीन। दुकानदार गज के कपड़े को, 5 गज के कपड़े को थोड़ा करके नाप ले, 4.25 गज कर दे दे, खींच के नाप ले, वैलुल लिल मुतफिफीन। घर से आप निकले गोश्त लेने के लिए, गोश्त वाले ने अपना स्केल में ऐसी कुछ हेरा फेरी की भी है, ये गोश्त फौरन यानी ज्यादा तुल जाता है उस वक्त, रखा जाए कम और नंबर तेजी से ऊपर चले जाते हैं, वैलुल लिल मुतफिफीन। आप गैस डलवाने जाते हैं, पेट्रोल डलवाने जाते हैं अपनी गाड़ी में, वो मीटर को तेज चला देते हैं, वैलुल लिल मुतफिफीन। हुकूमत को आप टैक्स नहीं देते मगर लेते वक्त चाहते हैं कि हमें पूरे पूरे हकूक दिए जाएं जैसे एक सिटीजन के होते हैं, जैसे एक शहरी के होते हैं, जैसे बाकी सारे ले रहे हैं। देते वक्त आप कमी करें, लेते वक्त आप चाहें पूरा पूरा लिया जाए, वैलुल मुतफिफीन। स्कूल से तनख्वाह लेते हैं मगर पढ़ाते कुछ नहीं है, क्योंकि आप ये चाहते हैं कि हमने जो अपनी एकेडमी खोली हुई है शाम को बच्चे वहां आके पढ़े। फीस आप स्कूल से वसूल कर रहे हैं लेकिन पढ़ा नहीं रहे, तो वैलुल मुतफिफीन। जैसा पढ़ाना चाहिए मैं आपके पास आऊं और मैं बगैर तैयारी के आके बैठ जाऊं, आपसे मैं आपका टाइम पूरा पूरा मांगू लेकिन देते वक्त मैं डंडी मार रही हूं, तो वही लुल मुतफिफीन। डॉक्टर अस्पतालों में मरीज को देखते हैं, उनको कह देते हैं शाम को हमारे प्राइवेट क्लिनिक में आ जाना, जबकि तनख्वाह कहां से ले रहे हैं, अस्पताल से, और वो पूरी पूरी ले रहे हैं, तो वही लुल मुतफिफीन। जब कोई पेपर्स चेक करता है तो किसी को नंबर ना हक ज्यादा दे देता है, तो बाकियों के हक में क्या किया, तदफीफ कर दी। बाद में दाखले होंगे तो बेईमानी से ज्यादा जो जिसको नंबर दिए गए थे वो दाखला ले लेगा, वो सीट वो ले लेगा और बाकियों के हकूक में कमी हो जाएगी, वही लुल मुतफिफीन। जिसने चीट करके, चीटिंग करके नंबर हासिल कर लिए, इधर किसी का पर्चा देख के उधर अपने पास कहीं कुछ निकाल के उसमें से कॉपी कर लिया, नकल मार के, उसने क्या किया, तदफीफ की उसने, चाहे एक लफ्ज भी कहीं से देख लिया था, तदफीफ की, वैलुल लिल मुतफिफीन। दूसरे के हक में डाका डाला ना उसने, अब वो सीट हासिल कर लेगा जो किसी और को मिलनी थी। नौकरी लेने के लिए कोई गया, पीछे से फोन आ गया, जरा जी इसका ख्याल रखिएगा। अब आपने कहा मैंने कौन सा कोई बड़ा ऐसा, तो कुछ मैंने नहीं काम किया, उसने बस यही कहा कि इसका ख्याल रखना। जानते ख्याल रखने का मतलब क्या है, कि किसी और के हक में कमी कर देना, किसी और को यह सीट मिलनी थी जो इसका एलिजिबल था, उसको पीछे करके इसको दे दी, तो वही लुल मुतफिफीन। जो जिसका हक था, जो इसके लायक था, उसके हक में कमी हो गई। अल्लाह ने हर तरह की कमी के लिए बस ये दो लफ्ज इस्तेमाल किए, वैल है मुतफिफीन के लिए। वालदेन हक में कमी करते हैं जब बेटे और बेटी में फर्क करते हैं, बेटे को खाने में कुछ, बेटी को खाने में कुछ, तालीम देने में बेटी को कम करना, उनको उन पे खर्च करने में, उनसे मोहब्बत करने में, केयर करने में कमी की जाती है, तो वैल लिल मुतफिफीन। और जो बेटी का नाम सुन के उसको पेट में ही मार देते हैं, वैलुल लिल मुतफिफीन। कोई चीज भी मामूली ना समझे, ये सब वो हकूक हैं। इंसान अपनी जॉब पे जाता है, अब जॉब वाले कह रहे होंगे बिजनेस वालों के लिए ये आयत है, नहीं, जॉब पे जाता है वो, वहां पे बैठ के तनख्वाह ले रहा है कंपनी से, लेकिन काम कर रहा है अपने अपने बिल्स अदा कर रहा है, अपने घर टेलीफोन कर रहा है, उसके ऊपर लंबी लंबी बातें कर रहा है, दोस्तों से बात कर ली, खबरें पढ़ ली, अखबार पढ़ लिए, ये कर लिया, क्या है ये? वैलुन लिल मुतफ्फिफीन। एक शख्स फौत हो जाता है, अरसा दराज गुजर जाता है, वारसों को उनका हक ही नहीं दिया जाता। कई बार तो ऐसा होता है कि वारिसों में से कोई फौत हो जाता है और दूसरे वारिस होते हैं कि तकसीम करने का नाम ही नहीं लेते विरासत। जिसका कब्जा है विरासत पर वही उस पर जमा रहता है, दूसरे डर के मारे अपना हिस्सा मांग के, मांगने से भी डरते हैं कहीं ताल्लुकात ना बिगड़ जाए। इसी तरह जिंदगियां गुजर जाती, वो मर खप जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, तो ये क्या कमी नहीं है? जब वो उसको तकसीम करेंगे उस वक्त या तो वो होगा ही नहीं, या फिर उस हो सकता है उस चीज की वैल्यू ही कम हो गई हो जो उसको अपनी जिंदगी में मिलनी थी, उसके ऊपर आप काबिज रहे। तो वैलुन लिल मुतफ्फिफीन। तथफीफ कहां कहां नहीं हो रही, आप देखें इतनी सारी इसकी मिसालें हैं ना, क्योंकि इंसान की जिंदगी में लेन देन खरीदो फरोख्त भी जारी रहती है और हकूक और फराइज भी अदा करने हैं। आपने मसलन कोई चीज बेचनी है, गाड़ी बेची, घर बेचा, कुछ बेचा, उसके अंदर उसके जो ऐब है उसको छुपा लिया, कीमत आपने किसकी ली है? मसलन आप मिसाल के तौर पे आपकी गाड़ी में एक डेंट है, अब क्या था वो आपको तो पता है, अगर आप बताएंगे तो कीमत कम हो जाएगी, आपने क्या किया, डेंट वाली गाड़ी सालिम गाड़ी की कीमत पे बेच दी, आपने क्या किया, तथफीफ कर दी ना। जॉब से आप 9 to 5 जॉब है, 9 to 5 जॉब है, लेकिन आप जॉब से 5 मिनट पहले उठ के चल पड़ते हैं, 15 मिनट पहले से आप अपने सामान बंद करना शुरू कर देते हैं और जॉब में 5 मिनट पहले से आप जो है ना पूरिया बिस्तर बंद किया और चल पड़े। वो जो 5 मिनट पहले आप चल पड़े, क्या किया आपने? आप कहते हैं नहीं तो क्या हो गया, लो 5 मिनट से क्या फर्क पड़ता है, 5 मिनट में मैंने कौन सा इतना बड़ा काम कर देना था। नहीं, वो 5 मिनट नहीं है, वो 5 मिनट 5 मिनट 5 मिनट, देखें एक दिन के तो 5 मिनट हुए, उसके बाद हफ्ते के कितने हो गए, वो 25 मिनट, महीने के 100 मिनट, साल के कितने हो जाएंगे, और जब तक आपने जॉब की तब के कितने होंगे। तो वो छोटे छोटे मिनट, ये 5-5 मिनट जो यहां पे 5 मिनट लगते हैं, जब वहां पे इंसान अपना हिसाब देने के लिए खड़ा होगा तो ये 5 मिनट एक गुनाहों का पहाड़ बन जाएगा, एक पहाड़ होगा, इतना बढ़ जाएगा कि इंसान उसका हिसाब नहीं दे सकेगा। आज हम कहते हैं ना, क्या हो गया, फिर क्या हो गया, लो तो वक्त चाहे जाया करना, चाहे जल्दी उठाना, चाहे वक्त की पाबंदी नहीं करना, चाहे वो उनके काम को उस तरह से नहीं करना जितने जिस तरह से वो तनख्वाह दे रहे हैं, इसी तरह किसी को बात कोई पहुंचानी है तो पूरी ना पहुंचाना, कम करके या बढ़ा चढ़ा के पेश कर देना, ये भी तथफीफ है। हक क्या था कि पूरी पूरी पहुंचाई जाए, उसमें कमी कर दी। यानी कोई भी काम किसी भी मामले में अपना तो फर्ज पूरा नहीं अदा करना, दूसरे से ये सोचना कि वो अपना फर्ज पूरा अदा करे, वो मेरा हक दे, ये तथफीफ ही है। और इसमें देखिए, इस ये जो पहली दूसरी आयत है ना, अल्लदीना इज़्ज़तालु अल्लानासि यस्तौफून, इसमें कोई बुराई नहीं है, कोई बुराई नहीं है कि आप अपना हक पूरा पूरा लें, कोई बुराई नहीं है। बुराई किस मामले में आती है कि जब इंसान लेते वक्त तो बड़े उसको अकलमंदी आ जाती है, बड़ा अकलमंद है, लेकिन देते वक्त उसको बिल्कुल मासूम बन जाता है, भोला बन जाता है, तो मुझे तो पता ही नहीं कि किसी के क्या हकूक हैं, देते वक्त तुम बिल्कुल अनाड़ी हो, लेते वक्त तुम्हें सारी समझे हैं। तो ये चीज आती है फिर मुतफ्फिफीन में, वरना ये नहीं है कि आपको लेना ही नहीं चाहिए पूरा हक और कम लेना चाहिए तो वो अच्छी बात नहीं। बात यहां पे सिर्फ ये आ रही है, कंट्रास्ट बताया जा रहा है कि देखो तुम जो अपने लिए पसंद करते हो वो दूसरे के लिए नहीं पसंद करते। अपने पास आप मुलाजिम रखें तो आप चाहते हैं कि वो पूरा टाइम दे और ये करे, और आपकी मिसाल के तौर पे मेड्स आती हैं, आप चाहते हो उनसे कि ये बस पूरा अच्छी तरह काम करे, ये ऐसे करे, कहीं डंडी ना मारे, कहीं इधर उधर सफाई छोड़ के ना जाए, पूरा टाइम भी लगाए। लेकिन जब आप ड्यूटी करने लगते हैं फिर क्या होता? जब हम बात करने लगते हैं हम कहते हैं हमारे मुसलमानों में इतनी बेईमानी है ना आजकल, ऐसे करते हैं, करप्शन इतनी है ये। लेकिन जिस जगह पे आप काम करते हैं वहां पे आप भी तो करप्शन कर रहे होते हैं, वहां पे आप भी तो तदफीफ कर रहे होते हैं। जो जिस जिस जगह है वो अपनी अपनी जगह कर रहा होता है। हाँ ये बात अलग है, कोई बड़े डाकू हैं कोई छोटे छोटे हैं, मगर मुतफिफ तो बात ही उसकी हो रही है जो छोटी सी चीज में तदफीफ करे, कमी करे, थोड़ा थोड़ा करके निकाले। अल्लाह ताला ने उसके लिए इतने बड़ी बात फरमा दिया कि उसके लिए वईल है, तो बड़े बड़ी चीजें करने वालों के लिए तो क्या उनका क्या हाल होगा? हमसाए की दीवार है, आपने कहा कोई को, थोड़ा किसी को पता चलता है, थोड़ी सी आगे मैं अपनी दीवार बढ़ा लूं, अपनी बाड़ थोड़ी सी आगे लगा लूं, अपनी फेंस थोड़ी सी आगे कर लूं। इतनी सी आपको मैंने उस दिन भी बताया था कि एक बालिश्त जमीन भी किसी की हत्याई होगी तो सातों जमीनों का तौक पहन के वो अपने गले में आएगा, उनका क्या हाल होगा जो पूरे पूरे प्लाट हजम कर जाते हैं लोगों के, उन पे कब्जे कर लेते हैं, लोगों की जमीनों पे कब्जे कर लेते हैं, किसी का हक होता है और उसके ऊपर काबिज बन के बैठे रहते हैं सारी से जिंदगी, और दूसरा या तो कमजोर है या किसी मसलहत के तहत, या वो बेचारा नहीं कुछ बोल सकता, किसी भी मजबूरी के तहत वो नहीं जुबान खोलता, और वो इसी चीज को अपनी जीत समझ के और फायदा उठाते रहते हैं। तो ये फायदे तो बहुत आरजी हैं, बहुत थोड़े दिन के हैं। आप देखें लेते वक्त यहां पे ये इतनी प्यारी बात है ना, इससे पता चलता है कि इंसान दूसरे के लिए भी वही पसंद करे जो अपने लिए पसंद करता है, तब साहब हमें हकूक और ये देने सब आ जाएंगे। फिर हमें सवाल नहीं पूछना पड़ेगा कि अच्छा फिर उसका क्या हक है और हमने कहाँ पे कमी तो नहीं हम करें। आप अपने आप को वहां पे रख के देखते, देखेंगे चोर भी है ना, चोर भी वो ये नहीं चाहता कि मेरे घर में चोरी हो जाए, ऐसा ही है ना। कोई कितना भी बड़ा डाकू धोखाबाज और लेन देन में बेईमानी करने वाला है, वो ये नहीं चाहता कि जब मैं सौदा खरीदने जाऊं तो मेरे से कोई बेईमानी करे। तो फिर तुम खुद भी ना करो ना, दूसरे के लिए भी वही चाहो जो अपने लिए चाहते हो। तो जब खुद हक अदा करने की बारी आए तो फिर अगर इंसान भूल जाता है लेकिन दूसरे से एक्सपेक्ट करता है कि वो जरूर अपना हक अदा करे, ये सही नहीं है। तो जो काम खुद नहीं कर रहे उसको दूसरे से एक्सपेक्ट ना, ये है आयत 2 और 3 में। तो अल्लाह ताला ने खुद ही फरमा दिया कि मुतफिफीन कौन है जो ये काम करते हैं। अब हम अपने आप को भी देखें, इसके अंदर चेक करें कहां कहां तदफीफ हो रही है, इसलिए क्योंकि ये आयत बड़ी सख्त है कि वईल है मुतफिफीन के लिए। ये ना हो कि हम अपना हक लेने के लिए तो बहुत सेंसिटिव हो मगर दूसरों को हक देने के मामले में संगदिल हो जाए, भोले बन जाए, जैसे हमें कुछ पता ही नहीं है। तो चूंकि ये बात इतनी ज्यादा यानी कोई मामूली वो नहीं है, इसलिए हम सारी अपनी जिंदगी में जो जो हम काम कर रहे हैं, जिस जिस जगह हमारे पर जो जो हकूक व फराइज हैं, उन सब का एक दफा जायजा लें कि क्या मेरे लेने और देने के पैमाने बराबर हैं। वो चीज जो मैं दूसरों के लिए ये कह के इग्नोर कर देती हूँ तो क्या हुआ, इतनी सी तो चीज है, लो अब तुम इतनी सी चीज मुझसे मांगोगी, और लो क्या अब इतनी सी चीज के भी सवाल होगा, इतनी सी कमी का क्या फर्क पड़ता है, सो वॉट। वो जब मैं दूसरों को देने लगती हूँ तो मुझे ये बात याद आती है, लेकिन जब मैंने लोगों से लेना होता है तो तब मैं क्या चाहती हूँ, तब मैं कहती हूँ सो वॉट, कोई बात नहीं, इतनी सी चीज ही तो है। इसलिए अगर कहीं पे भी हमारे साथ ऐसा हो रहा है कि हम हमसे कहीं कमी हो रही है, और यकीनन हो रही होगी, यकीनन हो रही होगी, क्योंकि इंसान को पता भी नहीं चलता कि वो इसमें कमी करने लग जाता है, कहीं हकूक में हो रही होगी। अगर हम कहीं, हो सकता है आप ये सोच रहे हैं हम कौन सा बाजार में बैठे हुए हैं, कौन सा रोज चीजें सेल कर रहे हैं या कुछ है, ठीक है नहीं है, लेकिन ये तो है ना कि हमारे ऊपर किसी ना किसी का हक है। वो जहां कम हो रहा है उसमें थोड़ी सी भी डंडी मारी जा रही है, तो वहां पे हम उन लोगों से अभी इसी दुनिया के अंदर ही हिसाब किताब चुका लें। कोई ये एक दिन वो आने वाला है कि फिर उस दिन वहां पे ना कोई करेंसी होगी, ना ही कोई और लेन देन के लिए कोई चीज होगी कि जिसको दे के हम अपनी जान खलासी करा लें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है ना, लोगो जिसने अपने भाई की बेइज्जती की हो या उस पर कोई और जुल्म किया हो, अब ये जो कमी है ना तथफीफ, ये जुल्म है। जुल्म क्या चीज होती है, जुल्म की डेफिनेशन पता है आपको? जुल्म ये नहीं होता सिर्फ कि कोई किसी को कोड़े मार रहा है तो ये जुल्म होगा, हो गया, किसी ने किसी को कत्ल कर दिया तो ये जुल्म हो गया, जुल्म है हक में कमी करना, ये जुल्म है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिसने किसी अपने भाई की बेइज्जती कर दी हो, ये भी कितनी बड़ी बात है। हर कोई चाहता है मेरी इज्जत की जाए, लेकिन जब दूसरे का मामला आता है अपने लिए क्या चाहते हो कि इज्जत की जाए मेरी, और दूसरे के लिए क्या चाहते हो कि उसकी बेइज्जत कर देते हो लोगों के सामने। आपको सबके सामने बेइज्जत किया जाए आपको पसंद नहीं आएगा, लेकिन दूसरों की इज्जत आप उछालने बैठ जाए मजलिसों में। कहां कहां हम तथफीफ कर रहे हैं, देखें जरा। अल्लाह ताला ने तो खुद ही इसकी डेफिनेशन बता दी कि लेने वक्त क्या चाहते हो, अपने लिए क्या चाहते हो, और जो दूसरों के साथ करने लगते हो तो तब क्या करते हो। तो कभी हमसे गैर इरादी तौर पे ऐसे हो जाता है, इंटेंशनली नहीं भी होता, अन इंटेंशनली हो जाता है, उसके ऊपर भी हम फिर क्या करें। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिसने किसी अपने भाई की बेइज्जती की हो या इस पर कोई जुल्म किया तो उसको चाहिए क्या करे फिर, कि उससे माफ करवा ले उस दिन के आने से पहले जिस दिन ना दीनार होगा ना दिरहम। हाँ अलबत्ता अगर उसके पास नेक अमल होंगे तो उस बेइज्जती या जुल्म के बराबर उससे नेक अमाल निकलवा लिए जाएंगे, और अगर उसके पास उतने नेक अमल ना हुए तो मजलूम के गुनाह उस जालिम पर डाल दिए जाएंगे। ये बुखारी की हदीस है, सोच लें। फिर मैदान हशर में जब लोगों को इकट्ठा किया जाएगा ना, तो अल्लाह ताला ऐलान करेंगे कि मैं हूं बादशाह बदला दिलवाने वालों, अगर किसी जहन्नमी पर जन्नती का हक है तो वो उस वक्त तक जहन्नम में नहीं जाएगा जब तक जन्नती को जहन्नमी से उसका हक ना दिलवा दूं, और अगर किसी जन्नती पर जहन्नमी का हक है। अब ये उन वो लोग कान खोल के सुन ले जो सोचते हैं और कोई बात नहीं वो तो गैर मुस्लिम है वो तो काफिर है, उनके साथ तो मैं करूं तो बिल्कुल ठीक है, वो तो डिजर्व करते हैं ना, तो उनके साथ तो मैं बेईमानियां करूं, उनके साथ इस तरह से करूं धोखा दूं तो कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं, ये सुन ले, अगर आप जन्नती भी हों तो भी जहन्नमी का हक है अगर, तो जन्नती उस वक्त तक जन्नत में नहीं जाएगा जब तक जहन्नमी को जन्नती से उसका हक ना दिलवा दो, ख्वाह एक थप्पड़ ही क्यों ना हो। यह हदीस है मुस्नद अहमद की, इन्हें ये अल्लाह ताला ऐलान फरमाएंगे कि आज हकूक दिलवाने का दिन है ना, तो ना जन्नती उस वक्त तक जन्नत में जा सकता है ना जहन्नमी उस वक्त तक जहन्नम में जा सकता है। पहले यहां पे अपना तस्वीर करा, पहले सारा एड सब्ट्रैक्ट हो किसने किसको कितना देना है, अब काफिर ही क्यों ना हो, और उसका भी हक मारा होगा, उसको भी हक देने में कमी की होगी, चाहे आप उसके घर नौकरी करते हैं या उसकी दुकान पे जाते हैं या उसके साथ और कोई लेन देन है आपका या उनके मुल्क में रहते हैं या जो भी। देखें ये मामलात समझ के हैं, इनको गौर से दिमाग को खोल के इनको समझें, ये ना हो कि वहां पे तथफीफ निकल आए अमालनामे में, तो ये तो यहां पे लिखा हुआ है वैलुल लिल मुतफ़िफ़ीन, फिर क्या बनेगा। इसी वजह से कुरान पाक की तालीम लेना इतना जरूरी है ताकि इंसान को यहां पे दुनिया में ही पता चले कि अगर ऐसा काम किया तो इसका अंजाम क्या है। फिर भी अगर कोई करता है तो फिर उसकी अपनी मर्जी है, फिर जो करेगा वो भी फिर शरह सदर के साथ करे, फिर ठीक है, कम से कम जानते बूझते कर रहा होगा, फिर खुद ही जिम्मेदार है अपने करने का। लेकिन एटलीस्ट ये तो नहीं ना होगा कि मुझे पता ही नहीं था, मुझे नहीं तो नहीं पता था कि इतनी छोटी छोटी बातों के ऊपर भी यहाँ पे पकड़ होगी, या इतनी छोटी बात के ऊपर भी इतनी बड़ी यानी हलाकत और तबाही और बर्बादी और वैल की बात है। और यही छोटी छोटी चीजें जो है ना, फिर ये बड़ी बन जाती हैं, इस तरह की ये आदत बन जाती है, फिर इंसान को एहसास भी नहीं होता कि मैं कुछ गलत कर रहा हूं, ये नॉर्म बन जाता है। फिर उसको हैरत होती है कि ये आप क्या बात कर रहे हैं। फिर इंसान ने कहता है लो अब हमने भला रहना नहीं है दुनिया में, अब हम इस तरह अगर चलने लगे तो हो गए हमारे कारोबार, फिर अब ये तो मजबूरी है हमारी, फिर ये ना करें तो फिर इसका हल क्या है, ये तो बड़ा मसला बन जाएगा फिर। तो ठीक है, इसको आज नजरअंदाज कर सकते हैं, आज ठीक है ये बड़ा मसला बन जाएगा, इसका हल क्या है फिर, लेकिन कयामत के दिन कोई चीज इग्नोर नहीं होनी, हमें शायद मामूली चीजों का एहसास तक नहीं होता, इतनी सी चीज का भी हिसाब हो सकता है। लेकिन आज अगर हमने अपनी जिंदगी में रियली केयरफुली हर हर चीज को एनालाइज किया, और उसका बेहतरीन तरीका ये है किस तरह से हम फेयरली कर सकते हैं कि हम उसको अपने ऊपर रख के देखें कि अगर मैं इस जगह पे हूं तो मैं क्या चाहूंगी। ठीक है, बड़े बड़े जो हक मारे हुए हमने वो तो साफ सामने नजर आते हैं, लेकिन इस तरह से छोटी छोटी चीजों में भी आपको अंदाजा हो जाएगा। फिर इन पर हम बहाने नहीं बना सकेंगे। तो ये हमारा होमवर्क समझ लें कि हमने अपना जायजा लेना है, और इस याद रखें तथफीफ करने वाला खुद को समझता है कि मैं बड़ा अकलमंद हूं, देखो मैंने कैसे दूसरे को चकमा दे दिया, देखो कैसे मैंने दूसरे को वो कर दिया, इससे मैंने कैसे पैसे निकाल दिए, मैंने तो इतने की अपनी चीज बेच दी, मैंने तो ऐसे कर दिया। यानी दूसरे को थोड़ी पता होता है, वो बेचारा सीधा, उसको नहीं पता, आप कोई कारोबार मिसाल के तौर पर करते हैं, उसको नहीं पता आप जो गाड़ी लेकर आए उसमें क्या खराबी है। जो जो ग्राहक जो चीज लेकर आता है उसको नहीं पता होता ना क्या उसके अंदर फॉल्ट है क्या। अब वो जो दुकानदार है वो जिस तरह से बताता है जैसे करता है वो उसी के ऊपर यकीन कर लेता है, वहां पे क्या क्या तथफीफ हो रही है उसके तो ख्वाबो ख्याल में भी नहीं ना। वो आगे दोबारा आके इसका बदला ले सकता है, लेकिन याद रखे वो अल्लाह के यहां लिखा गया, जरूरी नहीं है कि वो लोग पलट के आपके पास आए, वो आपको कोई शिकायत करें या कुछ हो सकता है साफ बचते जाएं यहां पे लोग, वहां पे क्या करेंगे। और यहीं पे पता चल जाता है कि आखरत पे हमारा यकीन कितना है, कितना यकीन है। इसीलिए अल्लाह ताला ने फरमाया अला यदुन्नु लाइका अन्नहुम मबऊसून, क्या ये समझते हैं कि ये लोग उठाए जाने वाले नहीं है, इनको यकीन नहीं है कि इनको अल्लाह के पास खड़े होना है, लियौम अदीम, एक बड़े दिन को। साहिर है जिसको नहीं यकीन होगा वही ये काम करेगा ना, क्या जिसको ये यकीन हो देखें कि अल्लाह के आगे खड़े होना है मुझे और मेरी जवाबदेही है, वो मुझे बताएं कि वो कैसे डंडी मारेगा, उसके तो हाथ कांप जाएंगे, वो तो हर वक्त एनालाइज करता रहेगा अपने आप, वो तो बच बच के जिंदगी में चलेगा। जिसको रोज अपने सामने अपनी आखरत नजर आती हो, खुद सोचे ना, जिसको हर वक्त ये धड़का लगा रहता है कि मेरा बनेगा क्या, वो फिर ये काम कर सकता है। जैसे किसी के बारे में आता है कि हारिस बिन मालिक अंसारी रजी अल्लाह ताला अन्हु एक सहाबी हैं, एक दफा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हारिस क्या हाल है, अर्ज किया या रसूलल्लाह मैं बेशक सच्चा मोमिन बन गया हूँ, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सोच के कहो क्या कह रहे हो। हर चीज़ की एक हकीकत होती है, तुम्हारे ईमान की क्या हकीकत है, यानी किस बात की वजह से तुमने ये सोचा कि मैं सच्चा मोमिन बन गया। अर्ज़ किया, मैंने अपने नफ्स को दुनिया से फेर लिया, रात को जागता हूँ दिन को प्यासा रहता हूँ, यानी रात को तहज्जुद पढ़ता हूँ दिन को रोज़ा रखता हूँ, और जन्नत वालों की आपस में मुलाकातों का मंजर मेरी आंखों के सामने रहता है, और जहन्नम वालों के शोर और वावेले का नज़ारा मेरी आंखों के सामने रहता है, यानी जन्नत और जहन्नम दोनों का तस्वुर हर वक्त मेरी नज़रों के सामने रहता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तब फरमाया, आरिस बेशक तुमने दुनिया से अपने नफ्स को फेर लिया, इसको मजबूत पकड़े रहो। 3 दफ़ा फरमाया इसको मजबूत पकड़े रहो, यानी जाहिर ही बात है जिसके सामने हर वक्त जन्नत जहन्नुम का मंजर रहे वो दुनिया में ऐसी हेरा फेरियां कहाँ कर सकता है, क्योंकि ये तो थोड़े से फायदे हैं। इसने थोड़े से फायदे के लिए मुतफिव है ही ना, थोड़े फायदा निकालने वाला ना, इसने इतने थोड़े फायदे के लिए, हकीर फायदे के लिए उस दिन की पेशी को अपने लिए मुश्किल कर लिया कि वहां पे अल्लाह ताला ने अगर पूछ लिया कि क्यों तूने ऐसा किया था, क्यों तूने फलाने के हक में कमी की थी, तो क्या होगा। वो हदीस सबको मालूम होगी ना, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि मुफलिस कौन है, तो लोगों ने कहा वो जिसके पास पैसे नहीं होते, ये नहीं होता, माल नहीं होता, फकीर। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहीं, मेरी उम्मत का मुफलिस कौन है जिसने यहाँ पे किसी का हक मारा है, वहां पे किसी का हक मारा है, किसी को थप्पड़ मार दिया, किसी के ऊपर ये जुल्म कर दिया, ये है मुफलिस। क्योंकि इसकी नेकियां लोग ले जाएंगे, तदफीफ की होगी, क्या वो नहीं आके लेके जाएंगे नेकियां, हमारी नेकियों में से निकाल लेंगे। उस दिन कोई किसी का, ये आज लोग कह देते हैं ना, चलो कोई नहीं, बेचारे मजबूर हो गए, कह देते हैं अच्छा अब क्या इनसे लड़ाई लें हम, चलो जी आपको माफ़ किया, हम अब क्या कुछ कह ही नहीं सकते, तो माफ़ी करने के अलावा और कोई चारा नहीं होता, मजबूर होके। अब मसलन एक बेटी है, बहन है, उसको नहीं उसका हिस्सा मिला, वो क्या करेगी, लड़ेगी, अदालतों में जाएगी? नहीं, वो कहेगी नहीं चलो ठीक है, मैंने माफ़ कर दिया अपने भाई को, बाप को, किसी को, शौहर है वो नहीं हक देता, तो क्या कहेगी वो उसको, गैर अलग तो हो नहीं सकती, क्या कहेगी चलो माफ कर दिया। पर ये लोग वहां जाके माफ नहीं करेंगे, वहां जाके गिरेबान पकड़ लेंगे, वहां पे तो हर एक बंदा मोहताज होगा, पाई पाई का मोहताज होगा, तो वहां पे डॉलर तो होंगे नहीं, तो दो फिर अपनी नेकियां, कहीं तहज्जुदें चली गई, कहीं रोजे चले गए, कहीं तस्बीहात चली गई, कई लोगों के साथ मदद करना, अच्छा सलूक करना वो चला गया, कहीं वालदैन की खिदमत चली गई, तो रह क्या जाएगा इंसान के पास फिर। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं, क्या इनको ये नहीं यकीन है कि ये एक दिन उठाए जाने वाले हैं, यानी जो ये काम कर रहे हैं, तो क्या इनको भी पता नहीं। जैसे हमारे एक नेचुरल रिएक्शन आता है ना, जहन के अंदर एक नेचुरल बात आती है, किसी का भी सुनते हैं कि इतनी बेईमानी है, इतना जुल्म किया, हम तो खैर बड़े बड़े जो जुल्म होते हैं छोटों को तो हम कुछ समझते ही नहीं ना, इतने आदि हो गए हम भी जराइम और इन चीजों के कहानियां सुन सुन के, और खुद जुल्म कर करके, खुद लोगों के हकूक गसब करके इतने आदि हो गए कि जब हम कोई बड़ी बात को सुनते हैं तो फिर हम कहते हैं हाय क्या इसको यकीन नहीं है कि एक दिन कयामत है, इसको यकीन नहीं कि अल्लाह के सामने खड़े होना है। तो यही बात यहाँ पे कही जा रही, इनको यकीन नहीं है कि उठाए जाने वाले, अगर यकीन होता तो भला ये काम करते, उस दिन की पेशी का यकीन होना ये इंसान को सीधा कर देता है। क्योंकि ली यौमिन अदीम यौम यकूमुन नासु लिरब्बिल आलमीन, जिस दिन लोग खड़े होंगे रब्बुल आलमीन के सामने, वो दिन तो बहुत सख्त दिन है। और वो दिन क्या कैसा दिन होगा कि हदीस में आता है कि कयामत के दिन बंदों से सूरज इस कदर करीब होगा कि एक या दो नेजे के बराबर ऊंचा होगा। नेजा कितना होता है, नेजे का पता है आप लोगों को, स्पीयर कहते हैं उसको, यानी हाँ उसके बराबर ऊंचा होगा और सख्त तेज होगा सूरज। हर शख्स अपने अपने आमाल के मुताबिक अपने पसीने में गर्क होगा, बाज की एड़ियों तक पसीना होगा, बाज के घुटनों तक, बाज की कमर तक, बाज का तो पसीने, बाज को पसीने की लगाम दी गई होगी, लगामें होंगी पसीनों की। और हदीस में है कि धूप इस कदर तेज होगी कि खोपड़ी भुन उठेगी, जैसे भुन रही होती ना इस तरह, ये नहीं ऐसा नहीं होगा कि लोगों को फील ना हो गर्मी, मगर क्या करें उस दिन तो मर नहीं सकते ना, मर नहीं सकते उस दिन, तो आप खड़े ही रहना है, तो खोपड़ी भुन रही होगी और इस तरह उसमें जोश उठने लगेगा जैसे हंडिया में उबाल आता है। आज थोड़ी सी गर्मी से हम घबरा जाते हैं, लेकिन उस दिन क्या होगी, गर्मी इतनी शदीद होगी क्योंकि सूरज ही इतनी करीब है, लोग इतने भूखे उठाए जाएंगे कि इससे ज्यादा भूख उनको कभी नहीं लगी होगी, और नंगे ऐसे होंगे कि इससे ज्यादा लिबास की जरूरत उनको कभी महसूस नहीं हुई होगी, और इस कदर थके हुए होंगे, जाहिर थकावट उस दिन की हशर सामानियां ही ऐसी हैं, थोड़ी छोटी सी, हम तो शॉपिंग के लिए जाएं, हालांकि बड़े शौक से जाते हैं, उसमें ही थक जाते हैं, बाहर निकलते हैं थक जाते हैं, वो दिन जब खड़े 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 50,000 साल का जो दिन है, सूरज इतना करीब है, इंसान थकेगा क्यों नहीं, इतना थका हुआ कि इससे ज्यादा थकावट उसको कभी महसूस नहीं होगी हुई होगी। अल्लाह अकबर, अल्लाह वो दिन हमारे लिए आसान करे। और आप सबको मैं कहती हूँ कि इरादतन या गैर इरादी तौर पे कभी भी क्लास में कभी मेरी तरफ से आप लोगों को कोई तकलीफ पहुंची हो तो आप सबको मैं ये दरख्वास्त करती हूँ कि आप अल्लाह की खातिर मुझे माफ़ कर दीजिएगा। मेरी तरफ से किसी की भी दिलाजारी हुई हो, किसी को मैंने तकलीफ पहुंचाई हो, इस पूरे सफ़र में हमारा जब से स्टार्ट हुआ है आप लोग हमारे साथ हैं, तो किसी किस्म की भी कोई किसी को मेरी तरफ से कभी कमी हो जाती है, किसी की फ़ोन नहीं उठा सकती या किसी को और कोई मेरी वजह से कोई परेशानी हुई हो, तो मैं इसके लिए आप सबसे माफ़ी मांगती हूँ कि आप लोग मुझे इस पे माफ़ कर दीजिएगा, लेकिन दुनिया में ही माफ़ कर दें प्लीज़। कोई भी ये ग्रज ले के वहाँ तक, अगर कोई स्पेसिफिक किसी को कोई ऐसी बात हो, मेरे से अलग से बात करना चाहे, कोई ग्रज हो, कोई ऐसी मैंने किसी को तकलीफ़ दी हो, तो मैं उससे इंडिविजुअली भी माफ़ी मांगने को तैयार हूँ, लेकिन इसको पाल के ना रखिएगा प्लीज़। वो दिन बहुत सख्त है, देखें अल्लाह ताला फरमा रहे ये वो इतना बड़ा दिन है, उस दिन लोग रब्बुल आलमीन के सामने खड़े होंगे और इस हालत में खड़े होंगे, बेलिबास खड़े होंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अपने मुंह पे अपनी उंगलियां रख के कि इस तरह पसीने की लगाम चढ़ी हुई होगी, फिर आपने हाथ के इशारे से बताया कि बाज बिल्कुल डूबे हुए होंगे, और हदीस में कि 70 साल तक बगैर बोले चाले खड़े रहेंगे, ये भी एक और जगह पे आते 300 साल तक खड़े रहेंगे, और ये भी आता है कि 40,000 साल तक और 10,000 साल तक का भी आता है। तो डिफरेंट क्यों रिवायात है, इसलिए कि किसी के लिए वो 40,000 साल तक का खड़े, देखिए जो मुश्किल वक्त होता है, आप कहते हैं ना ये रात मेरे लिए ऐसी मुश्किल थी, ऐसी मुश्किल थी, ऐसे लग रहा था कि मुद्दतों गुजर गई हैं और रात नहीं गुजर रही है ना, वो 8 घंटे की रात आप मजे से जब सो के गुजारते हैं, मीठी नींद सोते हैं, तो ऐसा लगता है अरे अभी तो लेटी थी और रात गुजर गई, और कभी तकलीफ में हो अल्लाह माफ करे तो कैसे लगता है कि रात नहीं है, ये पता नहीं सदियां हैं जो गुजर के ही नहीं दे रही। तो इसी तरह है उनके लिए कि 40,000 साल तक खड़े रहेंगे, 10,000 साल तक खड़े रहेंगे, इतनी तकलीफ में तो 1 सेकेंड काटना भी मुश्किल हो जाता है। आप थोड़ा सा जहन में लेकर आए, अगर आप हज पे या उम्रे पे गए हैं जिस वक्त गर्मी के दिन हो और वहाँ पे बहुत ज़्यादा हजूम हो, उस वक्त को याद करें, किसी ऐसे वक्त में आपने मतलब वहाँ पे नमाज पढ़ी हो या कुछ है, हालांकि कितनी अब तो सहूलियात है वहाँ पे, किस तरह के एसी और उसका इंतज़ाम किया, फिर भी सर के ऊपर तो धूप होती है, इतनी दूर है सूरज, लेकिन लोग कहते हैं हज के दिनों में ही अच्छे जो मतलब मौसम के दिन हैं उनमें भी लोग कहते हैं कि दम घुट रहा होता है, हाय गर्मी हजूम की वजह से, और यहाँ पे तो ये हाल है कि 2 कदम रखने के सिवा जगह नहीं है। एक हदीस में आता है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हजरत बशीर गफारी से कि तू क्या करेगा जिस दिन लोग रब्बुल आलमीन के सामने 300 साल तक खड़े रहेंगे, ना तो कोई खबर आसमान से आएगी ना कोई हुक्म किया जाएगा। बशीर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहने लगे अल्लाह ही मददगार है। आपने फरमाया सुनो जब बिस्तर पे जाओ तो अल्लाह ताला से क़यामत के दिन की तकलीफ़ों और हिसाब की बुराई से पनाह मांग लिया करो। अल्लाहुम्मा से बिना हिसाब यसीरा, अल्लाहुम्मा से बिना हिसाब यसीरा। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क़यामत के दिन के खड़े होने की जगह की तंगी से पनाह मांगा करो, इतनी तंग होगी वो जगह, ओके देखें जैम पैक्ड होंगे लोग, पूरी खलकत खड़ी हुई है, आप क्या 20-30 लाख अगर हज पे लोग होते हैं उनसे इंसान घबरा जाता है, तो वहां पे तो जितने लोग अव्वल से आखिर तक हर एक इंसान खड़ा हुआ, सूरज इतनी करीब है, ना कोई बैठने की जगह ना कोई साया, तंग जगह है। तो आप उस दिन के खड़े होने की जगह की तंगी से भी फरमाया कि पनाह मांगा करो। इब्ने मसूद से रिवायत है कि 40 साल तक लोग ऊंचा सर किए खड़े रहेंगे, कोई बोलेगा नहीं, नेक और बद को पसीने की लगामें चढ़ी हुई होंगी, चाहे कोई नेक हो चाहे बद, घबराहट की वजह से, और देखें किस कदर गर्मी होगी। इब्ने उमर फरमाते हैं 100 साल तक खड़े रहेंगे। अल्लाहु अकबर, अल्लाह रहम फरमा दे, अल्लाह ताला रहम फरमा दे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब रात को उठ के तहज्जुद की नमाज शुरू करते थे तो 10 दफा अल्लाहु अकबर कहते, 10 दफा अल्हम्दुलिल्लाह, 10 दफा सुभान अल्लाह, 10 दफा अस्तगफिरुल्लाह। फिर फरमाते थे अल्लाह मग़फिरली वहदिनी वरज़ुकनी वआफिनी, और फिर अल्लाह ताला से क़यामत के दिन के मकाम की तंगी से पनाह मांगते थे। तो वो दिन इतना सख्त है, और उस दिन अगर इंसान ने किसी के हकूक देने हैं, सोचें कि फिर उस बंदे का क्या हाल होगा जिसको ये भी पता है कि मेरे सर के ऊपर लोगों के हक हैं, मैंने फलाने का हक मारा हुआ और फलां का हक मारा। वो बंदा उस दिन कितना घबराएगा, और इस तरह का बैगेज अगर लेके वहां पहुंच गए तो फिर क्या हाल होगा। जबकि वहां इंसान देखें, सूरह अल हिजर में अल्लाह ताला ने फरमाया ना, बस तेरे रब की कसम, फवा रब्बी का लनसअलन्नहुम अजमाइन, हम जरूर लोगों से सवाल करेंगे, अम्मा कानु यामलून, उस चीज के बारे में जो दुनिया में वो करते थे। तो अल्लाह ताला की अदालत में जवाबदेही कोई आसान काम नहीं है, ये तो इतना मुश्किल काम है कि अंबियाए कराम सोचे, नूह अलैहिस्सलाम, इब्राहिम, मूसा, ईसा अलैहिस्सलाम, ये भी क़यामत के दिन अल्लाह ताला की बारगाह में हाजिर होने की जुर्रत नहीं कर पाएंगे। अंदाजा कर सकते हैं, वो भी उस दिन कह देंगे कि हमें तो आज बहुत डर लगता, इससे ज्यादा हमने अल्लाह ताला को कभी गजबनाक नहीं देखा। तो सोचें कि फिर जब वो इतना घबरा रहे होंगे तो बाकी लोगों का क्या हाल होगा। ईसा अलैहिस्सलाम को जब अल्लाह ताला अपनी अदालत में तलब करेंगे, पूछेंगे क्या आपने कहा था लोगों से कि मुझे और मेरी माँ को इलाह बना लो, तो ईसा अलैहिस्सलाम ये नहीं कहेंगे मैंने को नहीं कहा था, वो फौरन कहेंगे सुबहानका या अल्लाह तेरी जात तो पाक है, फिर अपनी आजजी का इजहार करेंगे, अल्लाह मेरे इख्तियार में नहीं था कि मैं ये बात कहूँ, जिसे कहने का मुझे हक नहीं है। उसके बाद फिर अल्लाह ताला की सिफात बयान करेंगे, अल्लाह आपको, आप आलिमुल गैब हैं, अल्लाह ताला आपको इल्म होता अगर मैंने ये कहा होता, जो कुछ मेरे दिल में है वो आप जानते हैं, मैं नहीं जानता जो कुछ आपके दिल में, आप तो सारी छुपी खुली बातों को जानने वाले। उसके बाद कहेंगे कि मैंने लोगों के से, या अल्लाह मैंने इसके अलावा कुछ नहीं कहा जिसका आपने मुझे हुक्म दिया था, मैंने यही कहा था कि अल्लाह की बंदगी करो। यानी उनकी भी देखें कि उनकी हालत क्या हो रही होगी। ये अंबिया हैं, ये अल्लाह के चुने हुए लोग हैं, ये बेहतरीन लोग हैं मखलूक में, ये बख्शे बख्शाए लोग हैं, ये मासूम अनिल खता हैं। और सोचेंगे वो कहेंगे उस दिन आखिर में बड़ी आजी के साथ, इनकसारी के साथ, कि अगर अल्लाह अपनी उम्मत के बारे में कहेंगे, अल्लाह अगर आप इनको सजा दें आज तो ये आपके बंदे हैं, और अगर इनको माफ कर दें तो आप गालिब और दाना है, अल्लाह तेरी मर्जी है तू जो भी करे, वो भी बरी उजिमा हो जाएंगे। ये नहीं कहेंगे अल्लाह इनको माफ ही कर आज, नहीं, अगर अल्लाह आप सजा दें तो आपके बंदे, मैं क्या कह सकता हूं। उस दिन को हम जानते हुए फिर उसके बाद इग्नोर कर दें, जिस दिन अकेले अकेले अल्लाह की अदालत में पेश होना है, अकेले अकेले। अल्लाह ताला ने फरमाया ना कुरान में, जैसे तुम्हें पैदा किया था अव्वल मर्तबा अकेले ही, इसी तरह अकेले तुम्हें मेरे सामने पेश होना है। अगर दुनिया में कहीं इंसान को अरेस्ट होने का कोई खौफ हो तो सोचें क्या उसका हाल हो जाता है। अदालत में पेशी का खौफ हो दुनिया की अदालत में, या किसी इन्वेस्टिगेशन का खौफ हो जाए, क्या हाल होता फिर। तो अल्लाह की अदालत में पेशी से फिर इंसान को कितना डरना चाहिए। दुनिया में तो वकील हैं, कोई आपका ट्रांसलेटर है, कोई तर्जुमान है, कोई आपकी तरफ से खड़े होने वाला है, आखरत की अदालत में तो कोई वकील नहीं होगा, कोई तर्जुमान नहीं होगा। हर शख्स को अपने अमाल का खुद जवाब देना होगा, क्यों मैंने ये किया था इसका खुद बताना होगा। दुनिया की अदालत में ठीक है, जितनी भी बड़ी अच्छी अदालतें हो जाएं, यहां पे भी सिफारिशें चलती हैं, रिश्वतें चलती हैं, कोई प्रेशर डाल देता है, कोई अपने कॉन्टैक्ट्स यूज कर लेता है। अल्लाह की अदालत में तो ना सिफारिश है, ना कॉन्टैक्ट्स है, ना रिश्वत है। दुनिया की अदालत में झूठी सच्ची गवाहियां भी दिला लेते हैं लोग, आखरत की अदालत में तो झूठ मुमकिन ही नहीं है। और दुनिया की अदालतों में तो आपकी किसी एक आध गलती का मुकदमा होगा ना, मसलन है आपने ओवर स्पीडिंग कर दी, सिर्फ उसकी बात हो जाएगी, किसी को कोई और टिकट मिल गया उसकी बात होगी। आखरत की अदालत में तो जिंदगी भर के मुकदमात की पेशी होनी है। अल्लाह अकबर। दुनिया की अदालत से बचने के लिए सोचें, कोई लोग भाग जाते हैं, कोई दूसरे मुल्कों में चले जाते हैं, छुप जाते हैं, वो गुमनाम सी जिंदगी गुजारते रहते हैं। आखरत की अदालत से बचने के लिए तो कहीं पे भी नहीं भाग सकते, और उससे बड़ी कोई अदालत भी नहीं जहां पे अपील कर सके। यहां पे तो हाई कोर्ट में गए, तो वहां से फिर ऊपर सुप्रीम कोर्ट को मैं अपील कर दी, हाँ, और वो वहां पे भी ना हुआ तो फिर सदर को रहम की अपील कर दी। उससे वहां पे कौन सी उससे बड़ी अदालत होगी जहां पे जा सकेंगे। तो बात यह है कि जो लोग आखरत पे ईमान नहीं रखते उनकी तो खैर बात ही ना करें, लेकिन हम तो आखरत में और अल्लाह के हजूर पेश होने पे ईमान रखते हैं। हमें उस बड़ी अदालत में हाजिरी के लिए कितना फिक्रमंद रहना चाहिए कि एक ना एक दिन हमने अरेस्ट हो जाना है, एक ना एक दिन अरेस्ट होना। और फिर वहां पेशी होनी है, और फिर उस फैसले को हम चैलेंज नहीं कर सकते। यहाँ पे चैलेंज हो जाते हैं ना, उस फैसले के खिलाफ हम कहीं धरने नहीं दे सकते, उस फैसले के खिलाफ हम कुछ बोल नहीं सकते, उसको एक्सेप्ट करना ही करना पड़ेगा, उसके अलावा कोई चारा नहीं है। तो फिर क्यों ना आज उसकी तैयारी शुरू करते हैं। खास तौर पे तो ये सारा पारा ही हमें इस जुज को तो जब से शुरू किया है यही हमें याद दिला रहा है, यौम यकूमु नासु लिरब्बिल आलमीन, यही थीम है, जिस दिन खड़े होंगे लोग रब्बिल आलमीन के सामने, फिर उस दिन क्या करोगे सोचो तो सही। और ली का माना इंतजार का भी है, यानी ली रब्बिल आलमीन, रब्बिल आलमीन के लिए, यानी उसके इंतजार में खड़े होंगे, खड़े होंगे, खड़े होंगे, और मुद्दतों गुजर जाएंगे। और ये भी माना है उसके सामने खड़े होंगे। अब वो पता है ना, जो इंतजार है, इंतजार भी इंसान के लिए कितना तकलीफ दे होता है। यानी वो लोगों का वहां पे ये हाल हो जाएगा कि वो कहेंगे कि अब बस फैसला हो जाए, ये मरहला आप जल्दी गुजर जाए, हमें पता चले कि हमने जाना किधर है, आर होना है कि पार होना है, अब हमारा बनता क्या है। थोड़ी सी हमें कहीं नौकरी मिलनी हो, कोई उन्होंने बताना हो आपका वीजा लग गया कि नहीं लग गया, या कोई हमारा टेस्ट का रिजल्ट आना हो, हम कहते हैं बस जल्दी बता देना, इंतजार नहीं हो रहा, बेचैनी है, परेशानी है, जब तक वो रिजल्ट आ ना जाए, जब तक बात हो ना जाए, पता ना चल जाए, कितनी परेशानी रहती है। तो वहां पे इतना लंबा इंतजार होगा, लोग कहेंगे अब पता चल जाए हमें, तब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शिफात कुबरा करेंगे ना, कि अल्लाह ताला की हम्दो सना बयान करेंगे और अल्लाह ताला से दुआ करेंगे कि अल्लाह लोगों का हिसाब शुरू कर दे, ताकि हशर के दिन की सख्ती खत्म हो। इस दिन की जो लंबाई है और जो तकलीफ है वो खत्म हो, अब हिसाब किताब शुरू कर दिया जाए। अल्लाह अकबर। इंसान का सोचे क्या हाल होगा जब उसको पता होगा कि अब बस हिसाब शुरू होने लगा, अब बस मेरी जिंदगी के कच्चे चट्टे खुलने वाले, क्या हाल होगा उस वक्त। और उस इंतजार में अभी वो इंतजार की सोचेंगे कि कितनी ज्यादा तकलीफ है ये, कि इंसान बस वेट कर रहा है कि अब मेरा बनने क्या वाला है, फिर कोई होश होना है किसी की तरफ देखने का। और वाकई फिर वो दिन वो है कि क्या होश होगा कि किसी की तरफ देखेंगे, कौन बेलिबास है या क्या है, हर एक को तो अपनी अपनी पड़ जानी है। फिर क्यों ना जिंदगी के ये जो आज कच्चे छट्टे हैं ये सारे याद आए इंसान को, ये क्यों ना अपने किए हुए अमल याद आएंगे। इसीलिए वो किसी का शेर है, जवानी में आदम के वास्ते सामान करो गाफिल, मुसाफिर शब से उठते हैं जो जाना दूर होता है, कि जवानी में ही अपने वहां के लिए सामान कर। जिस मुसाफिर ने दूर जाना होता है ना, वो रात से ही उठ के तैयारी शुरू कर देता है, सफर शुरू कर देता है। तो हमने जाना दूर है और इसमें बुढ़ापे का इंतजार नहीं कर सकते। याद रखें, मुझे जाना है, मुझे यहां रहना नहीं है। इसलिए अभी से आखिरत की इन मंजिलों की तैयारी करनी है। सुभानकल्लाहुम्मा वबिहम्दिक नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंत नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक।